का था, रूह वही, रूप नया।
आप सुनने जा रहे हैं कहानी दो मित्र, और इसे लिखा है गी द मोपासा ने। पेरिस घिरा हुआ था और अकाल से त्रस्त भी, यहां तक कि छतों पर चिड़ियों और नालियों में चूजों की संख्या भी घट गई थी। लोगों को जो कुछ भी खाने योग्य मिल रहा था वो उन्हें खा रहे थे। मॉरिसॉट, जो कि पेशे से घड़ी साज था, जनवरी की एक चमकदार सुबह को पतलून की जेब में हाथ डाले उदास एवं भूखी स्थिति में पेरिस के बुलेवार्ड में घूम रहा था। अचानक वो अपने परिचित मित्र सावेस से टकराया, जो मछली पकड़ने के दौरान उसका मित्र बना था। युद्ध आरंभ होने के पूर्व से ही मॉरिसॉट की यह प्रवृत्ति थी कि वो प्रत्येक रविवार को मछली पकड़ने की हुक हाथ में लेकर और टिन का डब्बा पीठ पर लटकाए देखा जा सकता था। वो अर्जेंटुएल रेल द्वारा कोलंबस तक जाता था और वहां से इले मेरोंट तक पैदल जाता था। वहां पहुंचने के बाद से ही वो मछली पकड़ना शुरू कर देता था और दिन ढलने तक मछलियां पकड़ता रहता था। ये जगह उसके लिए स्वप्न लोक के समान थी। प्रत्येक रविवार को वो इसी स्थान पर सावेस से मिला करता, जो हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था। वो रियू नोट्रे डेम डिलोरेट का एक वस्त्र व्यापारी था और साथ ही एक उत्साही मछुआरा भी था। अक्सर वो दोनों आधे दिन तक साथ में बैठकर मछलियां पकड़ते गुजारते थे। वो एक दूसरे को शब्दों के बिना भी अच्छी तरह समझते थे, क्योंकि उनकी पसंद और सोच समान थी। वसंत की सुबह के 10 बजे, जब प्रातः का सूर्य जल पर हल्का हल्का कोहरा पैदा कर रहा था और दोनों उत्साही मछुआरों की पीठ गर्म कर रहा था, तब मॉरिसॉट प्रायः अपने पड़ोसी से टिप्पणी करता, यहां तो बहुत ही आकर्षण है ना, जिसका जवाब दूसरे मित्र द्वारा यूं दिया जाता, मैं इससे ज्यादा की कल्पना भी नहीं कर सकता। और ये सीमित शब्द पर्याप्त होते थे एक दूसरे को समझने और सराहना करने के लिए। शरद ऋतु में दिन की समाप्ति के वक्त, जब सूर्यास्त के समय का सूर्य पश्चिम आकाश पर रक्तिम लाली बिखेरता और किरमिची बादलों का परावर्तन संपूर्ण नदी को लाल आभा प्रदान कर देता, दोनों मित्रों के चेहरे पर आभा आ जाती और वृक्ष सुंदर हो जाते, जिनकी पत्तियां शीत ऋतु का पूर्व स्पर्श कर रही होती। मॉरिसॉट की ओर मुस्कुराकर सावेज कह उठता, क्या मनोरम दृश्य है। और मॉरिसॉट दृश्य पर से नजरें हटाए बिना कहता, ये बुलेवार्ड से कहीं ज्यादा सुंदर और अच्छा है। जैसे जैसे वे एक दूसरे को समझते गए, वे आत्मीयता से हाथ मिलाते और बदली हुई उन परिस्थितियों की सोच उनके मिलने पर प्रभावित होती। सावेज गहरी सांस में बुदबुदाया, ये कितना उदासी का समय है। मॉरिसॉट ने भी दुखी मुद्रा में सिर हिलाया, और ऐसी ऋतु में ये वर्ष का सबसे बढ़िया दिन है। वास्तव में आकाश बादल रहित और नीला था। दोनों एक साथ चलते रहे, आकर्षण और वेदना के साथ। मॉरिसॉट बोला, मछली पकड़ने के बारे में क्या विचार है, हमने कितना सुंदर समय गुजारा है ना। अब हम दोबारा कब मछली पकड़ सकेंगे, मॉरिसॉट ने पूछा। दोनों एक छोटे से अल्पागृह में प्रवेश कर गए और साथ ही कुछ पीने का सामान खरीद लिया, फिर पुनः एक साथ फुटपाथ पर चलने लगे। अचानक से मॉरिसॉट रुक गया, क्या पीने के लिए कुछ और लें, उसने पूछा। अगर तुम पसंद करो तो, सावेज ने सहमति प्रदान की, और तब वो एक शराब की दुकान में गए। जब वे बाहर आए तो खाली पेट मदिरा सेवन करने के कारण वे दोनों बड़े ही अस्वाभाविक नजर आ रहे थे। ये एक शीतल सुहावना दिन था और हवा के झोंके उनके चेहरे से टकरा रहे थे। शीतल हवा के प्रवाह ने शराब के प्रभाव को सावेज पर से समाप्त कर दिया था। वो अचानक रुक कर कहने लगा, मान लो वहां जाएं तो। कहां? अरे मछली पकड़ने। लेकिन कहां? अरे क्यों, पुराने स्थान पर। फ्रांसीसी चौकी कोलंबस के लिए बंद हो गई है और मैं कर्नल ड्यूमोलिन को जानता हूं, वो हमें आसानी से जाने के लिए अनुमति पत्र दे देगा। मॉरिसॉट प्रसन्नता से थर्रा उठा।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मैं तैयार हूं।
और वो दोनों मछली पकड़ने का हुक और डोरी लाने के लिए जुदा हो गए। एक घंटे के पश्चात दोनों एक मार्ग पर साथ साथ जा रहे थे। वो कर्नल के आवास पर पहुंच चुके थे। उनकी प्रार्थना पर कर्नल मुस्कुराया और उसने अनुमति दे दी। शीघ्र ही उनके द्वारा सीमा चौकी को पार कर लिया गया। वो वीरान कोलंबस से मार्ग बनाते हुए सीएनए स्थित अंगूर के बाग के बाहरी इलाके तक पहुंच गए। इस समय दिन के 11 बज रहे थे। उनके पहुंचने से पहले ही अर्जेंटवेल का पूरा गांव जीवन रहित हो गया था। ऑर्गेमेंट और सेनोइस की पहाड़ियां ही परिदृश्य पर प्रभाव डालती नजर आ रही थी। नेंटेरे के वृहद मैदान खाली पड़े थे। धूसर रंग की भूमि खाली पड़ी थी और चेरी के वृक्ष भी रिक्त थे। सावेज ने ऊंचाइयों की ओर संकेत करते हुए कहा, प्रूशिया के लोग वहां भी आ गए हैं। वीरान प्रदेश के परिदृश्य ने दोनों मित्रों में अनिश्चित आशंका की यातना को उत्पन्न कर दिया। प्रूशियावासी, उन्होंने अभी तक किसी को नहीं देखा था, लेकिन वो उनकी उपस्थिति को कई महीनों से फ्रांस को नष्ट करते, लूटमारी करते, जनसंहार करते और भूखों मरते महसूस कर रहे थे। उस अनजान विजेता देश के प्रति उनमें भय और घृणा की भावना अंधविश्वास के रूप में पहले से ही मौजूद थी। मान लो हमें उनमें से किसी का सामना करना पड़े तो, मॉरिसॉट ने कहा। हम उन्हें उपहार में मछली दे देंगे, सावेज ने उत्तर दिया। हालांकि वो इस बात के लिए सतर्क थे कि उनमें से किसी की दृष्टि उन पर ना पड़े। नितांत खामोशी का आतंक उनमें प्रबलता से शासन कर रहा था। अंत में सावेज ने निडरता के साथ कहा, आओ शुरू करें, डरो मत, बस हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। और उन्होंने अंगूर के बाग में से अपना रास्ता बनाया। वो दोहरे होकर झुकते हुए जमीन से लगकर अंगूर की लताओं के तले आंखें और कान सतर्क करके आगे बढ़ रहे थे। खुले मैदान का एक टुकड़ा पार किया जाना अभी शेष था ताकि वो नदी के किनारे तक पहुंच सकें। उस टुकड़े को उन्होंने दौड़कर तय किया जब तक कि वो पानी के किनारे नहीं पहुंच गए। मॉरिसॉट ने जमीन पर कान लगाकर उभरने वाली पैरों की आहट लेने का प्रयास किया, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। उनका आत्मविश्वास पुनः लौटा और वे मछली पकड़ने के काम में जुट गए। सावेज ने पहली मछली पकड़ी, मॉरिसॉट ने दूसरी, और उसके पश्चात प्रत्येक क्षण दोनों के हुक की डोरी के सिरे पर छोटी छोटी चांदी की तरह दमकती मछलियां तड़पती हुई नजर आईं। अपने शिकार को वो पांव के करीब रखकर महीन जाली के थैले में डालते जा रहे थे और बहुत ही उत्साह से भरे हुए थे। सूर्य उनकी पीठ पर प्रकाश रश्मियां उड़ेल रहा था। न उन्होंने कुछ अन्य सुना और ना ही किसी अन्य विषय में सोचा। पूरी दुनिया से बेखबर वे अपने आप में मछली पकड़ने में लगे थे। लेकिन अचानक पत्थर के धड़धड़ाने की आवाज उभरी, उनके पांव के नीचे की जमीन कांप उठी, तोपें पुनः गरजने लगी। मॉरिसॉट ने सिर घुमाकर नदी के किनारे से आगे की ओर देखा। माउंट वलेरियन के पीछे पर्वत की चोटी से सफेद और भयानक धुआं उठ रहा था। अगले ही पल दूसरे धुएं ने पहले का अनुसरण किया और कुछ ही पलों में धमाकों ने पृथ्वी को कपकपा दिया। फिर अन्य धमाके हुए और मिनट दर मिनट पर्वत भयानक ढंग से सफेद धुएं के रूप में सांस लेता नजर आया। सावेज ने अपने कंधे हिलाते हुए कहा, वे वहां फिर से आ गए। मॉरिसॉट, जो कि उत्सुकता से तैरती मछलियों को ऊपर नीचे उछलते देख रहा था, अचानक कुछ क्रोध की गिरफ्त में आ गया। उसने खिन्नता के साथ टिप्पणी की, कैसे मूर्ख हैं जो इस प्रकार एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं। ये तो जानवरों से भी बदतर हैं, सावेज ने जवाब दिया। और मॉरिसॉट ने घोषणा की, और सोचना यह है कि ये उस समय तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सरकारें बनी रहेंगी। प्रजा कभी युद्ध की घोषणा नहीं करती, सावेज ने हस्तक्षेप करते हुए कहा। मॉरिसॉट ने उसे बीच में ही रोका। एक राजा के नीचे हम विदेशी युद्ध में रहते हैं, और प्रजा के अंदर क्रांति युद्ध में। उन दोनों ने राजनीतिक समस्याओं के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया। एक बात पर वे सहमत थे कि उन्हें कभी आजादी प्राप्त नहीं होगी और माउंट वैलेरियन से धड़धड़ाने की आवाजें बंद हुए बिना यूं ही गूंजती रहेंगी। फ्रांसीसियों के घर तोप के गोलों से ढाए जा रहे थे, इंसान की जिंदगी को पीसकर उसका चूरा बनाया जा रहा था, अनेक स्वप्नों को नष्ट किया जा रहा था, अनेक संजोई गई आशाएं, उनकी भावी प्रसन्नताएं निर्दयता पूर्वक शोक में तब्दील की जा रही थी। यही जीवन है, सावेज ने घोषणा की, बल्कि ये कहना चाहिए कि यही मृत्यु है, मॉरिसॉट ने हंसते हुए जवाब दिया। लेकिन अचानक वे अपने पीछे के कदमों की आहट से कपकपा उठे। गोल घूमकर उन्होंने चार व्यक्तियों को देखा जिनके चेहरों पर दाढ़ी थी। उनकी उनकी वेशभूषा से ऐसा लग रहा था जैसे वो सैनिक हैं। उन्होंने सिर पर सपाट टोपियां पहन रखी थीं। उन्होंने अपनी बंदूकों से दोनों मछली पकड़ने वालों को घेर रखा था। मछली पकड़ने की हुक उनके मालिकों के हाथ से छूट कर नदी में जा गिरी। कुछ ही क्षणों के पश्चात उन दोनों को हिरासत में लेकर एक नाव में डाल दिया गया और नाव नदी के पार एलमेरेंट तक ले जाया गया। जीर्ण शीर्ण नजर आने वाले भीमकाय व्यक्ति ने, जो टांगे फैलाकर लंबे क्ले पाइप से धूम्रपान कर रहा था, दोनों को विशुद्ध फ्रेंच भाषा में संबोधित करते हुए बोला, ओ अच्छा मोस्योर, हलो हलो, तुम्हारा मछली पकड़ने का काम काफी अच्छा रहा, नहीं? तब एक सैनिक ने मछलियों से भरा थैला अधिकारी के पांव के करीब रख दिया। त्रुशियावासी अधिकारी मुस्कुरा उठा। बुरी तादाद नहीं थी मछलियों की, मैंने देखा, लेकिन हमें किसी अन्य विषय पर बात करनी चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनना और बीच में टोकना मत। मेरी नजर में तुम दोनों गुप्तचर हो, जो मेरी और मेरे अभियान की टोह लगाने के लिए भेजे गए हो। स्वाभाविक है कि मैंने तुम्हें पकड़ा और मैंने तुम्हें गोली मार दी। तुम मछली पकड़ने का दिखावा कर रहे थे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपना वास्तविक उद्देश्य बता दो। तुम दोनों मेरे हाथों पड़ चुके हो और तुम्हें उसके परिणाम भुगतने होंगे। यही युद्ध के नियम है और यही युद्ध है। लेकिन तुम चौकी से यहां तक आए हो, इसलिए तुम्हारे पास कोई पासवर्ड तो होना ही चाहिए। वो मुझे बता दो, मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। दोनों मित्र मुर्दों की भांति पीले पड़ गए। दोनों अगल बगल में खड़े होकर अपने हाथों को फड़फड़ाने लगे और अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। कोई कुछ नहीं जान पाएगा, अधिकारी ने बात जारी रखी, कोई कुछ नहीं जान पाएगा। तुम अपने घरों तक शांति से पहुंचा दिए जाओगे और ये राज तुम्हारे साथ ही गायब हो जाएगा। अगर तुम मना करते हो तब इसका आशय होगा मौत, तुरंत मौत। चुन लो। वे अचल खड़े रहे और उन्होंने जुबान नहीं खोली। प्रूशियावासी पूर्णतया शांत होकर नदी के करीब हाथ फैलाए हुए गया और बोला, सोच लो कि महज अगले 5 मिनट में तुम इस नदी के पेंदे में नजर आओगे। सिर्फ 5 मिनट में। मैं समझता हूं तुम्हारे सगे संबंधी तो होंगे ही, है ना? माउंट वैलेरियन से अभी भी गड़गड़ाहट गूंज रही थी। दोनों मछुआरे तब भी खामोश बने रहे। जर्मन शख्स घूमा और उसने अपनी भाषा में आदेश दिया। दर्जन भर सैनिक आगे बढ़े और उन्होंने 20 कदम की दूरी पर मोर्चा संभाल लिया। मैं तुम्हें 1 मिनट का समय और देता हूं, अधिकारी ने कहा, एक भी पल ज्यादा नहीं। फिर वो शीघ्रता से उठा, दोनों फ्रांसीसियों के करीब गया, मॉरिसॉट की बांह थामी और उसे कुछ दूरी पर ले गया और धीमी आवाज में बोला, जल्दी, पासवर्ड, तुम्हारा मित्र कुछ नहीं जान सकेगा, मैं रहम खाने का दिखावा करूंगा। मॉरिसॉट ने जवाब में एक भी शब्द नहीं कहा। तब प्रूशियन अधिकारी पहले की तरह सावेज को कोने में ले गया और ठीक वही बात कही। सावेज ने भी कोई जवाब नहीं दिया और दोनों एक दूसरे के आसपास आकर खड़े हो गए। अधिकारी ने अपना आदेश दिया, सैनिकों ने बंदूकें तान दी। तब अचानक ही मॉरिसॉट की दृष्टि घास पर कुछ कदम की दूरी पर पड़े मछलियों से भरे थैले पर गई। सूर्य के प्रकाश में मछलियां तब भी चांदी की तरह चमचमा रही थी। मॉरिसॉट को अपना हृदय डूबता सा महसूस हुआ, हालांकि वो अपनी आंखों में आंसू न आने देने के लिए खुद को रोक रहा था। अलविदा, अलविदा सावेज, वो विचलित अंदाज में बोला। अलविदा मॉरिसॉट, सावेज ने जवाब दिया। दोनों ने हाथ मिलाया। भय के कारण वे सिर से पांव तक कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने जवाब में अपना प्रभुत्व बनाए रखा। अधिकारी ने चिल्लाया,
गोली दागो।
12 गोलियां एक बार में चली और लगा जैसे एक ही गोली दागी गई हो। सावेज तात्कालिक रूप से आगे की ओर गिर पड़ा। मॉरिसॉट, जो थोड़ा लंबा था, जरा झूलता हुआ मित्र के करीब जा गिरा। उनका चेहरा आकाश की ओर था तथा खून उनके सीने पर मौजूद कोट से रिस रहा था। जर्मन व्यक्ति ने नए आदेश जारी किए। दोनों मित्रों के पांवों को साथ बांध दिया और तब उन्हें नदी के किनारे पर ले जाया गया। माउंट वैलेरियन की चोटियां धुएं से आच्छादित थीं और गड़गड़ाहट तब भी बदस्तूर जारी थी। सैनिकों ने मॉरिसॉट और सावेज को सिर और हाथ से थामा। उनके शरीर को निष्ठुरता से बलशाली हाथों ने झुलाया और फिर तिरछी मुद्रा में नदी की धारा में फेंक दिया। पानी ऊपर की ओर उछला, उसमें झाग बना और एक चक्रवात सा आ गया और फिर शांति छा गई। हल्की लहरें तब किनारे से टकरा रही थीं। कुछ खून की बूंदें नदी पर चित्ती के रूप में चमकी। अधिकारी जो पूरे वक्त मौन था, उसने निर्दयी हास्य के साथ टिप्पणी की,
अब मछलियों की बारी है।
और तब वो अपने घर जाने के लिए मुड़ गया। अचानक उसने जाल को देखा, जो मछलियों से पूरा भरा हुआ था और भूल से वहीं पड़ा था। उसने एक मछली उठाई, फिर मुस्कुरा कर चिल्लाया,
विल्हेम!
सफेद एप्रन पहने एक सैनिक बुलावे पर वहां आ खड़ा हुआ और प्रूशियन ने शिकार को उछाला, जो कत्ल किए गए व्यक्तियों ने पकड़ा था, और कहा,
ये मछलियां रखो और मेरे लिए ने जरा फटाफट भून तो दो,
जब तक ये जिंदा हैं, उनका स्वाद बना रहेगा। और वो दोबारा पाइप के कश लगाने लगा। आप सुन रहे थे कहानी दो मित्र, और इसके लेखक थे गी द मोपासा। गाथा के जरिए आपके सामने इसे पेश किया नयनी दीक्षित ने।